ध्रुव ने तिरछी नजरों से अरमान की ओर देखा और आहान से कहा, अगर इस वक्त तू चुप नहीं हुआ और तेरी बात अरमान ने सुन ली तो तेरा क्या होगा, तो उसके बारे में सोच। उस फॉरेनर की चिंता तो तू छोड़ ही दे। वो ध्रुव को छेड़ने लगा। अब आगे दादाजी ने कहा, अब तुम सब लोगों को इन्विटेशन देना पड़ेगा कि फटाफट से मंदिर के अंदर चलो। आस्था मायूसी से एक तरफ खड़ी हो गई। दादाजी, जो मंदिर में दर्शन के लिए आगे जा रहे थे, अचानक रुके। आस्था को इस तरह से आगे ना बढ़ता हुआ देखकर वे हैरान हो गए। दादाजी आस्था के पास आए, उसके सर पर हाथ रखकर बोले, क्या बात है बेटी, आप तो मंदिर आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और मंदिर देखते ही आपकी आंखों में खुशी की चमक हमने खुद महसूस की थी, तो फिर अब मंदिर के अंदर आने के बाद आप इस तरह से उदास क्यों हो? आस्था ने एक नज़र अरमान की ओर देखा, फिर बारी बारी से उन चारों को देखा जो आस्था की ओर कन्फ्यूजन से देख रहे थे। आस्था हिचकिचाते हुए बोली, वो दादाजी, हमने कुछ मन्नत मांगी थी, हमें मंदिर में कान्हा जी को 102 नारियल चढ़ाने हैं और साथ ही साथ में मंदिर की परिक्रमा भी करनी है। दादाजी ने पूछा, तो फिर बेटी इसमें मायूस होने वाली कौन सी बात है, तुमने जो बोला है तुम वो करो, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? आस्था ने बड़े ही मासूम से तरीके से कहा, वो दादाजी, मंदिर में नारियल चढ़ाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। आस्था के मासूम से तरीके से ये कहने पर अरमान उसे हैरानी से देखता रहा। आस्था की शक्ल देखकर उसे यकीन हो गया कि ये लड़की कितनी बड़ी एक्टर है, किस तरह से पैसे ना होने का दिखावा कर रही है। अरमान ने आस्था की बातों को एक्टिंग ही समझा। वो चारों हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और बोले, एक बिलियन ईयर की पत्नी जिसके पति को खुद नहीं पता कि उसके पास कितनी दौलत, कितना पैसा है और कहाँ कहाँ है, लोगों को वो पैसे गिनने में साल भर जाएंगे, उनकी पत्नी 102 नारियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है ये बोल रही है, ये उनके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज थी। दादाजी आस्था की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, अरे आस्था बेटा, इसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? वो अरमान की ओर घेर कर बोले, अरमान, अब खड़ा खड़ा मुंह क्यों देख रहा है, जाओ बेटा, जाकर 102 नारियल लेकर आओ। आस्था हैरानी से मुंह खोले दादाजी की ओर देखने लगी। दादाजी आस्था से बोले, बेटा, शादी के बाद पति के पैसों पर पत्नी का बराबर का अधिकार होता है, तो तुम्हें पैसों के लिए टेंशन लेने की क्या जरूरत है, तुम्हारा पति है ना, वो अपने आप संभाल लेगा, तुम टेंशन मत लो, तुम चलो फटाफट से हम सब दर्शन कर लेते हैं। दादाजी की बातें सुनकर आस्था खुश हो गई। आस्था ने तिरछी नजरों से अरमान की ओर देखा और अरमान गुस्से से आस्था को घूर रहा था। आस्था मन ही मन में सोचने लगी, भगवान जी, इन्हें क्या हो गया है, ये तो हमें कितने गुस्से से घूर रहे हैं, और घूरेंगे भी क्यों ना, क्योंकि हमने इनका इतना बड़ा खर्चा जो करवा दिया है, अब पता नहीं ये हम पर इस बात का कितना गुस्सा निकालेंगे, और हमें भी क्या जरूरत थी पूरे 102 नारियल की मन्नत मांगने की, हम तो 3 या 11 नारियल भी तो बोल सकते थे ना, अब देखो ये हमें कितने गुस्से से घूर रहे हैं, अब हम क्या करें। आस्था ज्यादा देर तक अरमान की आंखों में नहीं देख पाई और फटाफट से वो मंदिर के अंदर चली गई। सब आस्था के मासूम से बात सुनकर जल्दी से मंदिर के अंदर मुस्कुराते हुए चले गए और वहां जाकर उन सभी ने पूजा और प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अरमान नारियल लेने के लिए आ गया था और उसकी नज़र जल्दी ही मंदिर के कोने पर बैठे हुए नारियल वाले पर गई। उसने वहां जाकर उसे पूरे 102 नारियल पैक करने के लिए कह दिया। वो नारियल वाला बहुत खुश हो गया क्योंकि आज सुबह से वो दुखी था। 102 नारियल बिकने पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अरमान से बोला, अरे बाबूजी, आपने तो हमारी सारी परेशानी खत्म कर दी, वरना हम तो सोच रहे थे कि शायद आज हमारी कोई कमाई ही नहीं होगी और हमें ऐसे ही खाली हाथ घर जाना होगा, पर देखो भगवान जी को, वे अपने भक्तों को कभी मायूस नहीं करते हैं। आपकी पत्नी बहुत किस्मत वाली है कि उसे आप जैसे पति मिले हैं जो उसकी मांगी हुई मन्नत के लिए पूरे 102 नारियल लेने के लिए आ गए हैं। अरमान उस नारियल बेचने वाले की बात सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठा और बोला, अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो, फटाफट से नारियल पैक करो और बताओ कितने पैसे हुए। वो नारियल वाला हड़बड़ा गया और सोचने लगा कि ज्यादा बकबक नहीं करनी चाहिए। जल्दी से उसने नारियल पूरे 102 पैक करके अरमान को दे दिए और बोला, साहब जी, आपके 5100 रुपये हुए हैं। अरमान हैरानी से उसकी ओर देखने लगा और बोला, 5100 रुपये? अरमान ने सोचा था कि नारियल की कीमत 50-60 हज़ार के करीब होगी। 5100 रुपये सुनकर अरमान हैरान था। वो नारियल वाला जल्दी से बोला, साहब जी, अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप हमें 100 रुपये कम दे दीजिएगा, आप 5000 रुपये दे दीजिएगा। अरमान ने अपने माथे पर हाथ मार लिया और सोचने लगा कि उसकी जिंदगी में ये लोग कहाँ से आ गए हैं, आखिरकार उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। एक वो लड़की जो मासूम होने का दिखावा करती है, ऊपर से ये नारियल वाला, इसे लग रहा है कि मैं इसके साथ मोलभाव कर रहा हूँ और इसका रेट सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ, सीरियसली। अरमान ने ज्यादा ना सोचते हुए जल्दी ही अपनी जेब से 10,000 की 2 गड्डी निकालकर उस नारियल वाले के हाथों में थमा दिए और बोला, कीप द चेंज। वो जल्दी से वहां से जाने लगा। वो नारियल वाला अपनी आंखें हैरानी से फाड़कर अपने हाथों में पड़ी हुई गड्डी को देख रहा था। ये उसके पूरे महीने भर की कमाई से ज्यादा आज एक ही दिन में हो गई थी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसने दिल से अरमान को दुआ दी कि कृष्ण भगवान करे कि आप हमेशा खुश रहें और आपकी जिंदगी में कोई ऐसा हो जो आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे। अरमान जाते हुए उस नारियल वाले की दुआ सुन चुका था और अगले ही पल वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारा वो भगवान कभी मेरी जिंदगी में बिना मेरी मर्जी के कुछ नहीं दे सकता है और ना ही मैं कभी ऐसे प्यार को अपनी जिंदगी में आने दूंगा और ना मैं कभी किसी को अपनी कमजोरी बनने दूंगा। ये सब सोचते हुए अरमान जल्दी ही मंदिर के अंदर चला गया और वहां जाकर उसने वो सारे के सारे नारियल आस्था को थमा दिए। आस्था एकदम से सभी नारियल का वजन संभाल नहीं पाई। तुरंत उसके चारों देवर आहान, ध्रुव, आकाश और सुमित आगे आए और उन्होंने आस्था के हाथों से नारियल ले लिए। दादाजी भगवान जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और उन्हें नहीं पता था कि अरमान ने आकर आस्था को ऑलरेडी नारियल दे दिए हैं। आस्था ने अरमान की ओर देखा। उसे देखकर वो समझ चुकी थी कि अरमान उससे बहुत नाराज है। उन चारों ने उसकी मदद की थी। आस्था उन सबको धन्यवाद कहते हुए अरमान की ओर देखकर बोली, अरमान जी आप हमें माफ कर दीजिएगा, हमें नहीं पता था कि हमें आपसे यहाँ पैसे लेने पड़ जाएंगे, पर हम वादा करते हैं कि हम जल्दी आपके पैसे लौटा देंगे। क्या ज्यादा पैसे खर्च हो गए? कितने रुपयों के नारियल आए हैं? हम जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा देंगे। आस्था की ये कहते ही अरमान हैरान हो गया। वो चारों एक दूसरे की शक्ल देखते हुए जोरों से हंसने लगे और आस्था उन सबको इस तरह से हंसता हुआ देखकर कंफ्यूज हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये लोग हंस क्यों रहे हैं। अरमान ने गुस्से वाली नजरों से आस्था को देखता हुआ वहां से चला गया। ध्रुव आस्था से बोला, अरे भाभी आप इतनी क्यूट क्यों हैं? ये क्या किया आपने? क्यों भाई से आपने ऐसा बोला कि आप उन्हें पैसे लौटा दोगे? क्या आपको भाई से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है? आस्था ने मासूम से तरीके से जवाब दिया, हम जानते हैं ध्रुव जी कि वो हमसे नाराज हो गए हैं क्योंकि हमने उनका इतना ज्यादा खर्चा जो करवा दिया है। आस्था की ये बात सुनकर उन्होंने अपने सर पर हाथ मार लिया और ध्रुव बोला, भाभी मुझे लगता है कि आपका कुछ नहीं हो सकता है। ध्रुव की बात सुनकर वो चारों मुस्कुराने लगे।
आस्था ध्रुव की बातें सुनकर थोड़ा सा डर गई और सोचने लगी कि लगता है उसने कुछ ज्यादा ही गलती कर दी है। वो चुपचाप से उन सारे नारियलों को लेकर पंडित जी के पास गई और जल्दी से उन्हें पंडित जी को थमा दिए और बोली, पंडित जी हमने 102 नारियल चढ़ाने की मन्नत मांगी थी और साथ ही साथ हमने 101 बार मंदिर की परिक्रमा करने की भी मन्नत मांगी है, तो क्या हम अपनी परिक्रमा आज पूरी कर सकते हैं? पंडित जी ने आस्था को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और उनकी नज़र आस्था के कपड़ों पर लगे खून और उसके घुटनों से निकल रहे खून पर गई।